नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे औषधि दुर्व्यसन अर्थात मादक द्रव्यों के व्यापक युवाओं के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर। हमने देखा कि किस प्रकार से व्यसन से ग्रस्त होकर युवा अपने भविष्य को अंधकारमय बनाते जा रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें इस अंधकार से मुक्त किया जाए, उन्हें इस समस्या से मुक्त किया जाए और समाधान की ओर ले जाया जाए। और आप जानते हैं कि हमें समाधान की ओर ले चलने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। तो आइए इस चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। दाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता जी, कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ये जो मादक द्रव्य है युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। एक व्यापक तौर पे जैसे हम देखते हैं कि प्रभाव तो समाज का भी पड़ता है, लेकिन एक प्रभाव जहां सबसे ज्यादा वो सीखता है, उसका पड़ता है युवाओं के ऊपर, वो है उनका परिवार। जब वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स, खास करके पिता या दादाजी, चाचा जी, मामा जी, ये सब चीज भी उसका सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाल मन में या युवा मन में ये बात अवश्य आती है कि जो चीज मेरे बड़े कर रहे हैं वो चीज मैं भी अपने जीवन में लूं। जैसे मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव की बात करूं तो मैं जब अपने आसपास देखा करता था, हमारे मित्र देखा करते थे कि हमारे बड़े सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं और बहुत सुंदर छल्ले निकाल रहे हैं अपने मुख से, तो हमारे अंदर भी आता था कि हम भी ये करके देखें। अब उनसे कह तो नहीं सकते थे कि हमें भी दो, हम भी पिएंगे, तो हम ये किया करते थे कि कागज की बीड़ी बना करके फिर हम लोग एकांत में जाके छुप के वो पिया करते थे और धुआं निकाला करते थे
और खुश होते थे।
बहुत खुश हुआ करते थे कि हम भी धुआं, भले हमें बहुत खांसी आते थे लेकिन फिर भी खुश होते थे कि हम भी धुआं निकाल रहे हैं। तो ये जो एक परिवार या परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
हाँ, देखिए, ये जिम्मेदार हैं परिवार और परिवार का परिवेश इन चीजों के लिए। और अगर हमें युवकों में बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति को रोकना है तो हमें इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। माँ बाप को सचमुच बहुत सावधान और बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा। आप जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक सत्य घटना याद आ रही थी। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, सच्ची बात है ये। उसको देख देख कर उसके लड़के ने पीनी शुरू कर दी और लड़का उसके साथ ही पी के साथ साथ घर आता था। अब उसको नशे में पता तो चलता था कि मेरा लड़का बिगड़ रहा है। आखिर उसने इतनी समझदारी का परिचय दिया कि खुद शराब छोड़ दी और फिर बच्चे को भी प्रेरित किया शराब छोड़ने के लिए। उनके घर में शांति आ गई
जी।
तो जिम्मेदार हैं सचमुच माँ बाप और परिवार का परिवेश। इसलिए जो ये आजकल एक फैशन बन गया है सभ्य समाज में कि जी डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, इनकी अवेयरनेस उनको भी होनी चाहिए। इसको एक सभ्यता का सूचक न मान के पतन का कारण माने और समाज में ऐसी व्यवस्था को बनाएं ताकि नवयुवकों को अच्छी प्रेरणा मिल सके।
मतलब परिवार के कम से कम जो बड़े हैं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो छोटे हैं उनके ऊपर ये गलत प्रभाव ना डालें, क्योंकि वो इन चीजों का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से छोटों के मन में,
छोटे बच्चे, बिल्कुल जब वो छोटे बच्चे हैं ना 8-10 साल के
जी,
तब उनकी जो मनोवृत्ति है या जो उनकी विवेक शक्ति है वो दूसरों से जल्दी सब कुछ ग्रहण करती है। ये बड़ा नेचुरल है, बिना कहे, और वो उन्हें डांटे डपटे भी तो भी इसका असर नहीं पड़ता है। वो जरूर कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये पी रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा,
कुछ अच्छा
जरूर
हो।
हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा और हो सकता है हमें बड़े होकर तो ये पीना पड़ेगा ना, तो क्यों ना अभी से चालू कर दिया जाए।
अच्छा, एक ह्यूमन नेचर भी तो है भ्राता जी ये, कि वो हर नई चीज को टेस्ट करना चाहता है या देखना चाहता, आजमाना चाहता है कि वास्तव में ये चीज है क्या जो हमारे और साथी या बड़े कर रहे हैं।
बिल्कुल यही है। लेकिन मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है युवकों को जानने के लिए, क्योंकि हम युवकों को एजुकेट करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि आज समाज में बहुत सारे जो अपराध बढ़ रहे हैं जिससे सरकारें भी तंग हैं और चिंतित हैं, और पुलिस भी जिसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस करेगी क्या, उनके पास तो जब केस हो गया तब आएगा ना। लेकिन वो हो गया पहले के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम अपने युवकों को एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें।
वैसे भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन
क्योर। तो मैं ये बताऊं, देखिए, चाहे मारकाट होती है
जी,
चाहे अपहरण होते हैं, चाहे रेप्स होते हैं, जो बड़े बहुत सुर्खियों में आ गई थी पीछे ये चीजें, तो इन सब के पीछे ये नशे कहीं ना कहीं अवश्य काम कर रहे हैं। तो मैं एक चीज के लिए युवकों को सावधान करूंगा कि ये जितने भी व्यसन हैं, ये मनुष्य के अंदर कामुक वृत्ति को बहुत बढ़ाते हैं, जो मनुष्य को बलात्कार की तरफ ले जाता है। और ये एक बहुत हिंसक प्रवृत्ति है। और तब ऐसी स्थिति आती है कि मनुष्य न तो भविष्य के बारे में कुछ सोच पाता कि तुम जेल में रहोगे या फांसी पर चढ़ोगे, तुम्हारे परिवार बदनाम होंगे, या तुम घर वालों को मुंह भी नहीं दिखा पाओगे, पकड़े गए तो क्या होगा, ये उसका विवेक संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। और उस टाइम वो इतना इस आवेग में आ जाता है कि वो तुरंत कर बैठता है, फिर भले ही जीवन भर पछताता रहे, उसका सारा ही जीवन अंधकार में चला जाए या वो फांसी पर चढ़े, जैसे अब कई केस हो गए, लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये व्यसन काम वासना को बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई काम वासना मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत घातक है, जो उसे बीमार भी करेगी, अनहेल्दी बना देगी पूरी तरह, उसके विवेक के विकास को रोक देगी और उसकी टोटल जो सफलता है जीवन की, टोटल जो उसकी उन्नति है, उसमें ये एक बहुत बड़ा बैरियर बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। हम देखते हैं, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, युवक भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मैं देखता हूं जिनके जीवन में काम वासना जितनी कम रही वो उतने ही उन्नति की ओर तेजी से अग्रसर हुए। बड़े बड़े काम उन लोगों ने किए जो इन वासनाओं से मुक्त थे, चाहे वो एक लंगड़ा व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया, चाहे बहुत अक्षम माने जाने व्यक्तियों ने बड़े बड़े ऐसे काम कर दिखाए जो सक्षम व्यक्ति भी नहीं कर पाए थे। तो एक ही चीज मैंने देखी उनमें कि बहुत सारे लोगों में ये पवित्रता की भावना बहुत अच्छी थी। तो युवकों को इस बारे में सावधान रहना है।
ये बात बहुत सुंदर प्रताप जी आपने कही कि व्यसन केवल उन तक सीमित नहीं है, लेकिन उनके परिवार को भी, समाज को भी ये प्रभावित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि उनके अंदर के जो ये विकार हैं, खासकर वासना है या बलात्कार के केस, हिंसा या अन्य प्रकार के जो भी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, उन सब में ये व्यसन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हम लोग एक जेल में गए थे ब्रदर जी, वहां एक कैदी से जब बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं व्यसन करता था इसीलिए मैंने ये हत्या का कार्य किया। तो ये देखने में जरूर आता है कि कहीं ना कहीं ये एक रीजन बन रहा है।
बिल्कुल, जेल में तो अगर जाएं आप 100 लोगों का इंटरव्यू लें तो उनमें से 90 ऐसे ही मिलेंगे जो कहीं ना कहीं व्यसनों के शिकार थे और उससे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर या उसके अधीन होकर उन्होंने अचानक कोई काम कर दिया और फिर जीवन भर पछताते ही रहते हैं।
निश्चित रूप से उसके अंदर भी, क्योंकि वो यंग एज में था, लगभग 25 साल का युवा था,
विवेक शक्ति उनके पास है। अब जब वो दूसरों की बातें सुनते हैं, अखबारों में कहीं सुनते हैं, तो सचमुच उनको कितना बुरा लगता होगा ये हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसे जेलों में बंद बहुत युवक पश्चाताप की अग्नि में भी जलते रहते हैं।
जी, एक सर्वे ये कहता है दाता जी कि आज भारत के जेलों में लगभग 8 लाख कैदी हैं और उनमें से 2 लाख कैदी युवा हैं। और कहीं ना कहीं इन व्यसनों के कारण ही आज वो इस यातना को भोग रहे हैं या अपने भविष्य को अंधकार में पा रहे हैं। और एक और सर्वे आया है ब्रदर जी, उसमें ये कहा गया है कि जो लोग व्यसनों का सेवन करते हैं उनके ब्रेन के सेल्स डैमेज होते चले जाते हैं। आपने जब विवेक शक्ति के नाश की बात कही तब मुझे ये ध्यान में बात आई। तो ब्रेन के सेल्स जैसे जैसे डैमेज होते चले जाते हैं तो हमारे शरीर के अन्य सेल्स तो निर्मित हो जाते हैं लेकिन ब्रेन के सेल्स फिर से निर्मित नहीं होते। इस कारण उनका भविष्य और ज्यादा अंधकार में होता चला जाता है और विवेक शक्ति उनकी नष्ट होती चली जाती है। तो एक बहुत बड़ा पहलू है जो व्यसन के दुष्परिणाम के रूप में सामने आ रहा है।
बिल्कुल, मैं भी पीछे एक जेल में गया, मुजफ्फरनगर यूपी में है
जी।
तो युवकों का ही संगठन रखा वहां, जब भी मैं जाता हूं तो जेल में एक प्रोग्राम जरूर रखते हैं। तो बहुत सारे युवक आए, लगभग 300। तो मैं देख रहा था, मैं ध्यान से सबके चेहरे भी देख रहा था जब मैं बोल रहा था, तो किसी के चेहरे पे पूरा ही डिप्रेशन था, किसी के चेहरे पर संपूर्ण पश्चाताप था
जी।
कोई बहुत ही रोने को तैयार हो रहे थे, बिल्कुल जैसे आंसू उनके गिरेंगे ऐसी स्थिति उनकी बनती जा रही थी, बहुत भावुक होते जा रहे थे। क्योंकि राखी का त्योहार होता है, हमारी बहनें राखी बांधने जाती हैं, उनको अपनी बहनें याद आती हैं और जरूर उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। तो ये सत्य है कि व्यसनों से ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं और ब्रेन कमजोर होने से, ब्रेन ही तो सारे शरीर को भी कंट्रोल कर रहा है, मनुष्य अस्वस्थ भी होगा, उसकी निर्णय शक्ति भी बहुत छीन पड़ जाएगी, उसकी सोच विचार करने की शक्ति भी नहीं रहेगी और वो इस संसार में ऐसे विचरण करेगा जैसे जानवर विचरण करते हैं।
जी जी जी, एक दुष्परिणाम को कंप्लीट रूप से लोगों के सामने या युवाओं के सामने रखने की बहुत आवश्यकता है प्रताप जी। हम एक चर्चा तो ये करते हैं कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं ये जो भी व्यसन है, लेकिन परिवार, समाज, राष्ट्र या आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है।
टोटल संपूर्ण रूप से नुकसानदायक है और वास्तव में तो हमारी एजुकेशन में इसके दुष्परिणामों की चर्चा होनी चाहिए। यह हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इसके बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है, गांव गांव में जाता ही है, स्कूल कॉलेजों में हमारे युवक ही जा रहे हैं जो युवकों को सिखा रहे हैं कि इन व्यसनों से तुम कैसे मुक्त रहो और इसके दुष्परिणामों की हम एक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा उनको जानकारी दे रहे हैं। तो इससे बहुत सारे युवक सचमुच समझ जाते हैं और बहुत सारे युवक लिख के प्रतिज्ञा करते हैं, अगर उनकी जेब में सिगरेट है तो सिगरेट दान करके जाते हैं कि ऐसे हम नहीं पिएंगे, और कई लोग उसको अपनाते भी हैं। तो हमारे ऐसे आदर्श युवक ही इस कार्य में लगे हुए हैं जो वास्तव में जिनके जीवन को देखकर दूसरे युवकों को लगता है कि सचमुच हमें भी तो ऐसा युवक बनना चाहिए जो देश के काम आ रहे हैं, जो समाज को कुछ सिखा रहे हैं, जो अपने देश को कुछ दे रहे हैं और व्यसनों से मुक्त हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इन व्यसनों के कारण गरीबी से गुजर रहे थे, जिनके परिवारों में व्यसनों के कारण शिक्षा नहीं आ पाई है, क्योंकि बाप या और कोई व्यक्ति शराब में ही सारा पैसा उड़ा देते थे तो शिक्षा नहीं हो पाई। तो देखिए, देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जहां हमारी सरकारें हर व्यक्ति को शिक्षित करना चाहती हैं, वहां अच्छे अच्छे लोग जो पढ़ने योग्य हैं, जो बुद्धिमान बच्चे थे, जो आगे चलकर बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते थे, इस शराब के व्यसन के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा हुई नहीं। तो इससे उस परिवार को आर्थिक नुकसान बहुत, उस परिवार में अशांति बहुत और बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में। एक जगह गुजरात में ही मुझे ले गए, हमारे पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है पालनपुर, उसके गांव में मुझे ले गए तो रात को प्रोग्राम था, तो बताया इस गांव में हर गली में रात को शराब पीकर लोग आते थे और आधी रात तक लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहनों से बात की, ब्रह्मा कुमारी बहनों से, और उन्होंने वहां प्रोग्राम किया और जब मैं गया था, उस सेंटर को वहां खुले एक वर्ष हो गया था, उसका वार्षिक उत्सव था, तो मुझे बताया कि अब इस गांव में कोई रात को झगड़ा नहीं होता, संपूर्ण शांति हो गई है। तो देखिए, ये चीजें ऐसी हैं कि अगर मनुष्य को सचमुच कुछ सिखाया जाए तो मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, वो सीखने को तैयार रहता है, उसको कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, उसको केवल ये कहा जा रहा है सिगरेट न पियो, इससे नुकसान हो जाएगा, शराब न पियो, लेकिन अगर ठीक रीति से उसको एजुकेट किया जाए, उसको मारपीट भी की जाती है
जी,
लेकिन वो उसके इतना वश हो जाता है कि मारपीट उसको कुछ नहीं लगती, कहेगा लो भाई मार लो, मैं तो पी लेता हूँ फिर से। तो एजुकेट करना, इसके दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराना, इसकी बहुत आवश्यकता है और हमारे युवक तो इस सब्जेक्ट में, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।
जी 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 भ्राता जी, कई बार कुछ युवा ये कहते हैं, जब बड़े उन्हें ये सीख देते हैं कि भाई ये बुरी चीजें हैं, इनसे मुक्त हो जाओ, तो कई बार वो ये कहते हैं कि आप सबने तो इसे टेस्ट करके देख लिया, आपने तो इसका आनंद ले लिया, और जब अब हमारी बारी आई तो आप हमें मना कर रहे हो, ऐसे में उन्हें क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें यही है कि उन्हें आनंद की सही परिभाषा हमें समझानी पड़ेगी, और जो बड़े हैं वो इसका उत्तर दे नहीं पाते,
वो मुस्कुरा के
उत्तर दे देते हैं, ऐसा तुम भी ले लो आनंद लेकिन ये आनंद तो नहीं है, ये तो आनंद को दस करने वाला है, एक विष है। तो हमें सच्चे आनंद की परिभाषा उन्हें देनी होगी, और सच्चा आनंद कैसे मनुष्य के जीवन को विकसित करता है, सच्चा आनंद इसमें नहीं कि आपको नशा हो गया और आप बेफिक्र हो गए और अपने को बादशाह समझने लगे और आप ऐसा देखने लगे मैं तो स्वर्ग में हूं, ओहो सुंदर डांस हो रहे, परियां नाच रही हैं, ये सब आनंद नहीं है, ये तो बहुत क्षणिक चीजें हैं। वास्तव में जैसे मैंने कहा कि हमें अपने ब्रेन की स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी, हमें युवकों को सिखाना पड़ेगा, आनंद तो सुंदर विचारों से उत्पन्न होता है, आनंद तो किसी की भलाई करने से उत्पन्न होता है, आनंद तो किसी असहाय को सहारा देने में, सहयोग देने में, किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को मुसीबत से बाहर निकालने में जो गुड फीलिंग होती है, आनंद तो उसको कहा जाता है। आनंद तो एक सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है, और जो साधनाओं के मार्ग पर रत हैं उन्हें जानना चाहिए कि आनंद तो सुंदर विचारों के द्वारा और मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा प्राप्त होता है, व्यसनों के द्वारा नहीं। तो ऐसी एजुकेशन अगर उन्हें दी जाए, और जिन माँ बाप को वो कह रहे हैं कि तुमने तो आनंद ले लिया, अब हमें लेने दो, हमारी बारी है, उन्हें ये चीजें जाननी चाहिए और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, खोल के बताना चाहिए कि आनंद नहीं हमने लिया, हमने तो जीवन को नष्ट कर दिया है। तो बच्चे भी समझेंगे सचमुच इससे जीवन को हम नष्ट कर देंगे। बाप को ही कहना चाहिए कि तुम पहले पढ़ो, तुम पहले योग्य बनो, फिर इन सब चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, अपना अनुभव सुनाना चाहिए बड़ों को कि हमने बचपन से या युवा काल से व्यसन लेकर कैसे अब हम मजदूर बन गए हैं, कैसे अब हम चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, हमने तो जीवन नष्ट कर लिया, अब तुम इससे
मतलब अनुभव युक्त बातें अपने बच्चों के सामने, युवाओं के सामने रखें कि हमने ये टेस्ट किया तो इसके क्या दुष्परिणाम हुए, किस प्रकार हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ नहीं बना पाए, और अब हमारे अनुभवों से आप सीखो कि आप इसमें ना पड़े, आप एक अच्छे राह पे चलें। प्रत्येक जी, कई बार कुछ लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि आप ये तो कहते हैं कि व्यसन न करो, लेकिन ये दुकानें, ये फैक्ट्रियां ही पहले क्यों नहीं बंद कर दी जाती हैं जिनमें इनका उत्पादन हो रहा है, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो लोगों में ये बात आमतौर पर ये प्रश्न उठते ही हैं, और वो कहते ही हैं कि यहाँ ये समाप्त हो जाए तो ऑटोमेटिक ये बात समाप्त हो जाए।
देखिए, जैसे लोग हंसते हैं ना कि सिगरेट की डब्बी पे लिखा रहता है सिगरेट पीना हानिकारक है, तो ऐसे ये बातें तो हैं, ये सरकार की बात है, उनको उसे आमदनी हो रही है या कुछ लोगों के अपनी इंडस्ट्री चल रही है।
एक सर्वे ये भी आया है कि सरकार को जितना ज्यादा इससे लाभ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि एक कैंसर के पेशेंट को जितना ज्यादा उस पर खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो जितनी आमदनी नहीं हो रही है उससे कहीं ज्यादा तो खर्च करना।
बिल्कुल यही बात है कि अगर हमारे ऊपर के लोग भी सात्विक विचारधारा के हो जाएं और इस सत्य को वो समझ लें। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक छोटी सी आमदनी को देखकर या कुछ लोगों का बिजनेस धंधा चल रहा उसको देखकर, उन्हीं लोगों में से लाखों लोगों को इसका बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। तो इसमें एक जो सुंदर सिद्धांत है अध्यात्म का, वो सबको जान लेना चाहिए कि गलत तरीकों से कमाया गया धन कभी भी सुखकारी नहीं होता है, वो उसी तरह से नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में अगर लोग इस पर ध्यान दें, अगर हमारी सरकारें भी इस सत्य को स्वीकार कर लें, तो वो शायद इन चीजों को बंद भी कर सकते हैं, पर ये काम उनका है। जैसे हमारे यहाँ पास पड़ोसी राज्य में गुजरात में नशा मुक्ति है
जी,
शराब पर पूरी तरह
पाबंदी लगा दी,
तो बहुत फायदा है। यद्यपि कुछ लोग राजस्थान में आ जाते हैं, माउंट आबू में आ जाते हैं पीने खाने, लेकिन वो कभी कभी आएंगे ना, साल में एक आध बार आएंगे, त्योहार पे आ जाएंगे, लेकिन इसका वहां अच्छा प्रभाव है। तो हम देखते हैं जब हम गुजरात में जाते हैं तो हमें भारत के और अन्य क्षेत्रों से एक अलग तरह का माहौल दिखता है, अलग वाइब्रेशंस मिलते हैं, लोगों का व्यवहार कुछ अलग दिखता है, लड़ाई झगड़े कहीं होते हुए नहीं दिखते, और उनकी जो भाषा है वो इतनी स्वेट नजर आती है कि हम सोचते हैं हम तो यूपी से हैं, वहां की लठमार भाषा और इनकी मधुर भाषा में कितना अंतर है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रभाव व्यवहार पर बहुत पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल प्रथा जी, एक बात तो ये रही कि चलिए गवर्नमेंट भी इस स्तर पे अपना कार्य करें, मीडिया भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है युवाओं को, जैसे फिल्म में, टेलीविजन में, पत्र पत्रिकाओं में, जो जब वो एक्टर्स को या बड़ों को इस प्रकार से धूम्रपान करते हुए देखता है तो उसका भी सीधा प्रभाव उसके मानस पटल पे पड़ता है, और वो सोचता है कि जैसे ये भी एक प्रेस्टीज इशू बना लेता है उसे कि ये कर रहे हैं तो हम भी वैसा करें, क्योंकि एक प्रकार से सिनेमा जो है समाज के ऊपर बहुत गहरा छाप
बिल्कुल ही है। हमारा मीडिया जो है उसमें भी आजकल का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एक्चुअली समाज का निर्माण कर रहा है, चाहे गलत तरीके पर उसको ले जा रहा है, चाहे उसको महानता की ओर वो अग्रसर करे, ये भी शक्ति उसके पास है, क्योंकि आजकल उसी का जमाना है। रही बात फिल्म एक्टर्स की, मैं तो अपने युवकों को कहूंगा तुम अपना आदर्श उन्हें न बनाओ, हमारे देश में महान पुरुष भी तो बहुत हुए हैं
जी,
अब के महात्मा गांधी और भी हमारे बहुत सारे अच्छे नेता भी जो थे, चलो आज नहीं भी हैं कुछ ऐसे अच्छे लोग, लेकिन हमारे नेता भी तो बहुत अच्छे थे तत्कालीन, हमारे धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे देश में बहुत महान हुए हैं, इतिहास महान पुरुषों से भरा पड़ा है, उनको आप अपना आदर्श बनाएं तो इस चीज से काफी मुक्त होंगे। बाकी मीडिया के लिए मैं कहूंगा कि मीडिया को, विशेषकर चैनल्स को, इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि केवल पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। पैसा किसी देश को महान नहीं बना सकता हमेशा, ठीक है पैसा एक आवश्यकता है, लेकिन वो समाज को सिखा क्या रहे हैं? उनकी हर चीज से युवक सीख रहा है, उसकी चिंतन की धारा बदल रही है, उसका व्यवहार करने का तरीका बदल रहा है, उसका चलना, उसका एक्ट करना बदल रहा है। तो हमारे देश में मैं जो खुल के कहना चाहता हूं कि जैसे न्यूज के बारे में कहा जाता है कि कुत्ते ने मनुष्य को काटा, वो कोई न्यूज नहीं है, किसी मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया वो फटाफट आएगा सारा दिन चैनल पे, वही आता रहेगा वंडर ऑफ टूडे, एक मनुष्य ने कुत्ते को काटा। तो देखिए ऐसी बात है, अच्छे समाचार भी बहुत हैं,
बहुत
बहुत हैं, अगर उनको भी थोड़ा हाईलाइट किया जाए तो समाज कुछ ज्यादा सीखेगा। इसलिए इस मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने देश के निर्माण में, अपने युवकों को महान बनाने में, अपने युवकों को सद्मार्ग पर ले जाने में। और अब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, व्यसनों से पूरी तरह छुड़ा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हमारे चैनल्स, अगर वो 6 मास भी अच्छी चीजें दिखाने लगे, उसका दुष्प्रभाव ही दिखाने लगे, हंसी की बात कि एक शराबी नाली में पड़ा है और कुत्ते ने टांग उठा के अगर इस सीन को दिखा दें तो अनेक युवक सीख जाएंगे कि कितनी दुर्गति हो रही है शराबियों की, और इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर दें 6 मास, तो आधे युवक 6 मास में ही व्यसनों को तिलांजलि दे देंगे।
जी बहुत सुंदर बात आपने कही है भ्राता जी, क्योंकि ये भी हमारे 4 आधार स्तंभों में से एक स्तंभ है मीडिया, और यदि इसमें इस प्रकार के चाहे व्यसनों के दुष्परिणामों को लेकर के या कुछ सुंदर बातों को उनके सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ी होगी वो एक अच्छे मार्ग पर, सद्मार्ग पर।
बिल्कुल, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारी पार्लियामेंट अगर ऐसा कानून बना दे कि वो सीन आपको नहीं दिखाने हैं जिससे युवकों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे क्राइम को बढ़ावा मिलता है, जिससे बलात्कार को बढ़ावा मिलता है, ऐसे चैनल्स पर, ऐसे समाचारों पर अगर पार्लियामेंट की ओर से प्रतिबंध लगा दिया जाए, और जो वो कर सकते हैं तो ये काम बहुत सहज हो सकता है।
बिल्कुल भ्राता जी, केवल एक लाइन लिख दिया जाता है आजकल कि भाई धूम्रपान या शराब पीना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुझे लगता है केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे आगे बढ़ना होगा। मीडिया को भी अपना उत्तरदायित्व समझना होगा समाज के प्रति कि वो समाज को एक अच्छी दिशा में, युवाओं को एक अच्छी दिशा में जाने के लिए अच्छे समाचारों के साथ साथ इन चीजों को पूरी तरह से अपने न्यूज से और साथ ही साथ फिल्मों से भी।
बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे मेडिकल वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि किस व्यसन से ब्रेन पर, शरीर पर कैसा कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके सीन दिखा दिए जाए, मेडिकली एजुकेट कर दिया जाए युवकों को, तो बहुत सारे युवक समझदार होते हैं। मैं युवकों को ऐसा नहीं मानता कि वो कोई कहीं भी बहने के लिए तैयार हैं, हमारे युवक बहुत बुद्धिमान है, और भारत तो बुद्धिमानों का देश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये संपूर्ण सत्य है। तो मीडिया से हमारे युवक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे और निश्चित रूप से देश इस महामारी, मैं इसको महामारी कहता हूँ, इससे मुक्त हो सकेगा।
जी जी जी, बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने रखी हैं, इसके क्या समाधान हो सकते हैं इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आपने बहुत सुंदर बातें हमारे सामने, हमारे युवाओं के सामने आज रखी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से व्यसन हमें सचमुच एक नशे के साथ साथ हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ की तरह है, और हम ये समझते हैं कि किसी न किसी रूप में इससे मुक्त होना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है ताकि समाज और राष्ट्र एक सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। आप सब बहुत समझदार हैं, अक्लमंद हैं, आपका जीवन आपके अपने हाथ में है, आप स्वयं निर्णय करें कि निर्व्यसनी जीवन श्रेष्ठ है या व्यसन युक्त जीवन श्रेष्ठ है। हमें अपने जीवन के माध्यम से अपने परिवार को, अपने समाज को, राष्ट्र को और अंततः सारे विश्व को एक सुंदर संदेश देना है, तो आए मशाल थाम लें और आगे बढ़ें संपूर्ण निर्व्यसनी जीवन की ओर। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।